नमस्कार भारत, तारीख 22 दिसंबर, दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। नागरिकता कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 15 पहुंची।
गंदी गंदी गालियां बक रहे, कह रहे हैं सब लोग अपने अपने घरों में बैठ गए, बाहर निकलो सालों, कहाँ हो, गंदी गंदी औरतों को गाली दे रहे, दरवाजे तोड़ रहे हैं
और आदमी लोगों को घसीट घसीट के ले जा रहे हैं। हम लोग सब बच्चे रो रहे।
रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में सीरिया में मदद पहुंचाने के प्रस्ताव को गिराया।
I am sitting here before each of you in a state of shock. The consequences of the Russian Federation and China's vetoes.
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, साथ ही होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। भारत में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इन प्रदर्शनों से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश प्रभावित हो रहा है। यहां प्रदर्शनों में अभी तक मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। कल उत्तर प्रदेश में रामपुर और कानपुर सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिली। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। अमरीका ने रूस और चीन के उस कदम की आलोचना की है जिसके जरिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को रोक दिया है। इस फैसले की वजह से लाखों सीरियाई लोगों तक पहुंचने वाली संयुक्त राष्ट्र की मदद में मुश्किलें आ सकती हैं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि रूस और चीन ने अपनी वीटो ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और अब इन दोनों देशों के हाथ खून से रंग चुके हैं। समुद्र में प्रवासियों को बचाने का काम करने वाले संगठन SOS मेडिटेरियन का कहना है कि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने दो अलग अलग अभियानों में जिन 100 से अधिक लोगों को बचाया है उन्हें कहां छोड़ा जाए। इस संगठन के बचाव और खोजी दल के अधिकारी निकोला स्टेला ने बीबीसी को बताया है कि बचाए गए लोगों में 7 बच्चे भी शामिल हैं।
The forward part of the boat was completely deflated and the boat was incredibly overcrowded. There were 112 people on board.
जिस नाव को हमने बचाया उसका आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया था और नाव में हद से ज्यादा लोग सवार थे। उस छोटी सी नाव में 112 लोग थे जिसमें 7 बच्चे भी हैं। जब हम उन्हें बचाने के लिए पहुंचे तो ये लोग बच्चों को हाथों में ऊपर उठाकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। ये थे SOS मेडिटेरियन संगठन के एक अधिकारी के शब्द। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने जिहादियों की तरफ से होने वाली हिंसा को पश्चिमी अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बताया है। मोहम्मद बुहारी अबुजा में आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। इस सम्मेलन में पूरे क्षेत्र के अलग अलग राष्ट्रपति और उनकी सरकारों के मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में इस्लामिक चरमपंथ से निपटने के तौर तरीकों पर चर्चा हो रही है। अपने भाषण में मोहम्मद बुहारी ने कहा कि सभी देशों को मिलकर चरमपंथी समूहों से निपटना होगा।
टेररिज्म रिमेन्स द मेजर थ्रेट टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ आवर रीजन।
हमारे इलाके की शांति और प्रगति के रास्ते में चरमपंथ सबसे बड़ी मुश्किल है। चरमपंथी समूहों की तरफ से होने वाले हमले हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम एकजुट होकर उनसे निपट सकते हैं और सीमा पार से होने वाले आतंकवाद का मुकाबला भी कर सकते हैं। ये थे नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तान के दक्षिणी शहर मुल्तान में बहाउद्दीन जकारिया विश्वविद्यालय के एक लेक्चरर जुनैद हफीज को ईश निंदा के आरोप में अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। 33 साल के जुनैद हफीज को मार्च 2013 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप था। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश ने जुनैद हफीज पर 5,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जर्मनी और रूस ने अमेरिका के उस कदम की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने रूस और जर्मनी के बीच बनने वाली विवादित गैस पाइपलाइन को रोकने की कोशिश की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पाइपलाइन को बनाने का काम संभाल रही फर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे उन्होंने सुरक्षा कारणों को वजह बताया है, लेकिन जर्मनी का कहना है कि ऐसे प्रतिबंध लगाकर अमेरिका जर्मनी के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग अभी तक शांत नहीं हुई है। शनिवार को तापमान में हुई वृद्धि की वजह से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में और ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। आग की वजह से कल एक और व्यक्ति की जान चली गई जबकि एक शख्स लापता हो गया। अभी तक कुल 9 लोगों की मौत आग की वजह से हो चुकी है और 700 घर जलकर खाक हो चुके हैं। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। रेडियो के साथ साथ आप इस कार्यक्रम को bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। नागरिकता कानून के विरोध की आग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकता कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। शनिवार को हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में रामपुर और कानपुर रहे। सरकारी सूचना के आंकड़ों के मुताबिक हिंसा में 263 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। कानपुर से पूरे ब्यौरे के साथ हैं हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र।
नागरिकता कानून के विरोध में राज्य भर में हिंसक प्रदर्शनों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। लखनऊ, कानपुर, बहराइच, वाराणसी, बिजनौर, मेरठ में हिंसा जारी ही थी कि शनिवार को रामपुर भी हिंसा की चपेट में आ गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। हिंसक घटनाओं में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सरकार प्रदर्शन के दौरान नुकसान की गई सार्वजनिक संपत्ति की भरपाई दंगे में शामिल लोगों से ही कराने की तैयारी कर रही है। अब तक 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राजधानी लखनऊ में आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया कि हिंसक प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है।
अभी तक पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ उस दौरान हिंसा और आगजनी की जहां जहां घटनाएं हुई उस समेकित रूप से 263 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 57 पुलिसकर्मियों को फायर आर्म्स की इंजरीज हुई हैं। उपद्रवियों की हिंसा के क्रम में अब तक 15 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना प्राप्त है।
वहीं कानपुर में शुक्रवार को ही हिंसा का माहौल अभी थमा भी नहीं था कि शनिवार दोपहर बाद परेड इलाके में फिर हिंसा शुरू हो गई। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ यतीम खाना पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करके वहां आगजनी की, बल्कि आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच घंटों पथराव और फायरिंग होती रही। इस हिंसा में 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शुक्रवार को ही हिंसा के बाद बाबूपुरवा इलाके से पुलिस ने 39 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें से 34 लोगों को शनिवार को रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सके। इसी इलाके में शुक्रवार को ही हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे। बाबूपुरवा, बेगमपुरवा और मुंशीपुरवा के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रात भर उन्हें परेशान किया और कई लोगों को उठा कर ले गए।
पथराव हुआ है उनके ऊपर, मतलब पहले बात करना चाहिए था ना। उनका कोई बड़ा अधिकारी आएगा यहाँ बात करेगा कि मतलब बस खाली लाठी चार्ज कर देंगे। 5 लोग को गोली मारे ना, उसमें से 3 लोग मर चुके हैं, इसका कौन जिम्मेदार है?
ये जो तोड़फोड़ हुई है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, रिक्शे टूटे हैं।
हाँ, ये पुलिस वालों ने तोड़ा है। 4-5 बजे की बात है, यहाँ पे पीछे मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है कि एक औरत को मारते हुए लेके गए।
दरवाजे खोल तोड़ के, जिनका कमजोर दरवाजे लात मार के जैसे भी खुल सका खोल के, और उसको उठा, लड़कों को उठा ले गए, नौजवान लड़कों को, औरतों को डंडे से मारा है, उनको हटाया है और जो मिल गया उसको उठा ले गए।
तो महिला पुलिस थी कि सारे आदमी?
सब आदमी, सिर्फ आदमी थे, सिर्फ जेंट्स थे,
सब आदमी ने मारा है।
आप भी यहीं की रहने वाली?
हम भी यहीं के रहने वाले, हमारे घर के बगल में सद्दाम नाम का लड़का है, उनके घर में घुस के उनकी अम्मी को मारा, घर से ले गए।
और गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं, कह रहे हैं सब लोग अपने अपने घरों में बैठ गए, बाहर निकलो सालो, कहाँ हो, गंदी गंदी औरतों को गाली दे रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं
और आदमी लोगों को घसीट घसीट के ले ले जा रहे हैं। हम लोग सब बच्चे रो रहे हैं,
घर में नहीं करें लड़ाई झगड़ा के बाद ले लेगा खींच के, बाद में ये सब हर सकिन, पहले नहीं करी ना उन लोगों ने, बाद में करा है पुलिस वालों ने, शाम को करा है।
11 साल के बच्चों को भी ले जा रहे हैं उन लोगों ने, क्या क्या घर में घुस घुस के ले जा रहे हैं।
बेटियां हैं बड़ी बड़ी, हम लोगों को डर लग रहा है कि लड़कियों के साथ कुछ गलत ना करें, घर में घुस घुस जा रहे हैं। इतना ऑर्डर उनको मिल गया कि देखते साथ गोली मार दो, लड़कियों के साथ कुछ करो, आप नई मस्जिद चाहिए, इसने सब औरतें वहीं इकट्ठा है, हम लोग वहीं से आ रहे हैं।
50-60 बच्चों को ले गए हैं, उनके घर के आदमियों को पता नहीं चला कहाँ रखे हो।
छापेमारी और तलाशी की बात से पुलिस ने भी इनकार नहीं किया, लेकिन बाबूपुरवा के क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार गुप्ता ने BBC को बताया कि किसी के साथ मारपीट नहीं की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक OP सिंह का कहना है कि राज्य भर में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के पीछे बाहरी तत्वों का हाथ हो सकता है।
विवेचना हमारी जारी है और हमने विवेचकों की टीम बनाई है, वो टीम अपना निरीक्षण परीक्षण कर रही है। ये बताना उचित नहीं होगा कि ये है, लेकिन बाहरी तत्वों का हाथ है। हम सभी एंगल्स की जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन कौन उसमें तत्व शामिल थे। उसमें NGOs भी शामिल हो सकते हैं, पॉलिटिकल पर्सनल भी शामिल हो सकते हैं और बाहरी तत्व भी शामिल हो।
राज्य में धारा 144 लागू होने के बावजूद लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के पीछे पुलिस और प्रशासनिक अक्षमता को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में अभी भी इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। हिंसा को नियंत्रित करने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे लगता नहीं कि स्थिति सामान्य हो गई है। समीर आत्मज मिश्र, BBC कानपुर।
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जहां एक ओर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं एक धड़ा इसके समर्थन में उतरा है। देश के लगभग 1100 बुद्धिजीवी, शिक्षाविदों और रिसर्च स्कॉलरों ने इसके समर्थन में एक साझा बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझा बयान में लिखा गया है कि यह कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना किए अल्पसंख्यकों को अपने देश में शरण देने की लंबे अरसे से लंबित मांग को पूरा करता है। इसमें आगे लिखा है कि 1950 की लियाकत नेहरू समझौते की विफलता के बाद विभिन्न नेताओं, राजनीतिक दलों ने, जैसे कांग्रेस और अन्य दलों ने नागरिकता देने की इनकी मांग की है। इनमें से अधिकतर लोग दलित जाति के हैं। हस्ताक्षर करने वालों में राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता और भी तमाम शिक्षाविद शामिल हैं। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी वीटो ताकत का इस्तेमाल करते हुए सीरिया में मदद पहुंचाने के लिए पेश किए गए एक प्रस्ताव को गिरा दिया। रूस और चीन के इस कदम की अमरीका ने कड़ी आलोचना की है। अमरीका का कहना है कि इसकी वजह से लाखों सीरियाई लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। दूसरी ओर रूस ने अपने फैसले के समर्थन में तर्क दिए हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी से।
अमेरिका ने रूस और चीन के उस कदम की आलोचना की है जिसके जरिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को रोक दिया है। इस फैसले की वजह से लाखों सीरियाई लोगों तक पहुंचने वाली संयुक्त राष्ट्र की मदद में मुश्किलें आ सकती हैं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि रूस और चीन ने अपनी वीटो ताकत का गलत इस्तेमाल किया है और अब इन दोनों देशों के हाथ खून से रंग चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा गया था कि आने वाले एक साल तक सीरिया में पहुंचने वाली मदद को तुर्की और इराक के क्रॉसिंग प्वाइंट से होकर जाने दिया जाए। हालांकि इसके लिए सीरियाई सरकार की मंजूरी नहीं ली गई थी। रूस ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सीरिया की सरकार उसके साथ है और वह चाहते हैं कि यह क्रॉसिंग प्वाइंट सिर्फ तुर्की में ही हो और उसकी समय अवधि भी 6 महीने के लिए ही हो। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका की राजदूत केली क्राफ्ट ने रूस के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह हैरान करने वाला फैसला है।
I am sitting here before each of you in a state of shock. The consequences of the Russian Federation and China's vetoes of this Security Council resolution will be disastrous. This decision is reckless, irresponsible, and cruel. Right now in Syria, 4 million people depend on the UN's cross-border assistance mechanism for medicine, shelter, and food. There is no justification imaginable for any member of this Security Council leaving vulnerable Syrian civilians with fewer means of securing vital aid.
मैं बहुत ज्यादा हैरान हूं। रूस और चीन के इस वीटो का नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। यह फैसला बिल्कुल गलत और गैर जिम्मेदाराना है। अभी सीरिया में 40 लाख लोग यूएन की मदद के भरोसे जी रहे हैं। इस मदद को रोकना किसी भी हालात में ठीक नहीं है। ये थे संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत केली क्राफ्ट के शब्द। रूस ने अपने फैसले के जवाब में कहा है कि वह सीरिया सरकार के साथ सहयोगी भूमिका में है। रूस ने कहा है कि सीरिया तक मदद पहुंचाने के लिए कई दूसरे रास्ते भी हैं और जिस रास्ते को अभी अपनाया जाता है उसकी जरूरत नहीं है। रूस का कहना है कि कई रास्तों पर अब सीरियाई सरकार का नियंत्रण हो चुका है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख ने चेतावनी दी कि अगर यह मदद रोक दी जाएगी तो इससे लाखों लोग भूख और बीमारी से मर सकते हैं।
रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हुए सीरिया में मदद पहुंचाने के लिए एक प्रस्ताव को गिरा दिया। एक बार फिर से भारत का रुख करते हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सीटी रवि का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस बयान में सीटी रवि कांग्रेस के एक विधायक को गोधरा दंगों की याद दिला रहे हैं। विवादित बयान पर चौतरफा आलोचना के बाद सीटी रवि ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा और अगर जरूरत पड़ी तो 1000 बार अपने उस बयान को दोहराएंगे। पूरे मामले पर सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कर्नाटका में बीजेपी के पर्यटन मंत्री सीटी रवि अक्सर अपने विवादास्पद बयानों की वजह से चर्चा में आते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री यूटी खादर के एक बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी अखल की वजह से गोधरा का हादसा हुआ था जिसमें कार सेवकों को आग के हवाले कर दिया गया था। खादर को यह भी जानना चाहिए कि उस हादसे का परिणाम क्या हुआ था। उनके इस बयान पर मीडिया और खासकर सोशल मीडिया में बवाल मच गया और ये भी खबरें आ गईं कि मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने उनको सलाह दी है कि वो इस तरह के बयान नहीं दें, खासकर जब मंगलुरु में अभी भी कर्फ्यू लागू है। इस बारे में सीटी रवि ने बीबीसी को बताया। मुख्यमंत्री ने हमें सलाह नहीं दी है क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की है। वो तभी सलाह देंगे जब हमने कोई गलती की हो। हमने इतना ही खादर को कहा है कि अगर वो ये समझते हैं कि राज्य में CAA और NRC लागू होने से राज्य में आग लग जाएगी, तो वो ये ना भूलें कि गोधरा के बाद क्या हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को आग लगाएंगे। हम स्पष्ट तरीके से बात करते हैं और वो बयान मैं हजार बार दोहराऊंगा। ये थे सीटी रवि के शब्द। रवि का मानना है कि कर्नाटका में ना खादर को और ना ही किसी दूसरे मुसलमान को किसी भी तरह का डर रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लगभग 50,000 लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो बांग्लादेशी हैं। रवि ने कहा, इस संशोधन में सिर्फ नागरिकता दिए जाने की बात है, उससे वापस छीनने की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यूटी खादर का मानना है कि उनके बयान को गलत अर्थ के साथ बीजेपी का एक ना एक नेता हर रोज उन पर इल्जाम लगा रहा है।
Connection between Godhra incident and NRCNCA protest. So much knowledge also these people doesn't have.
हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे गोधरा और आज के NRC के खिलाफ चल रहे आंदोलन को मिला सकते हैं। हमने इतना ही कहा था कि CAA और NRC के वजह से लोगों में एक डर पैदा हो गया है। इस डर को निकालने के बजाय ये लोग सत्ता में रहने के लिए समाज का विभाजन कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में एकता, मजबूती और शांति की जरूरत है। ये थे यूटी खादर के शब्द। दरअसल ये विवाद एक नई बयानबाजी की शुरुआत लग रही है और इसका असर तब तक चलेगा जब तक CAA और NRC की समस्याओं का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
असम में नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध और उससे उत्पन्न हुए हालात को देखते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्रों में नहीं गए हैं। इन विधायकों के मन में इस बात का डर है कि कहीं आंदोलन कर रहे लोग इन पर कोई हमला न कर दें। ऐसे में खासकर ऊपरी असम के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री सोनोवाल से मुलाकात कर लोगों की नाराजगी दूर करने का आग्रह किया है। गुवाहाटी से हमारे सहयोगी दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
2016 के बाद भाजपा के लिए असम तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में शायद ही कोई ऐसा मौका आया होगा जब पार्टी को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत पड़ी होगी। असम की 126 विधानसभा सीटों में 5 विधायकों वाली भाजपा ने 2016 में 60 सीटें जीतकर पहली बार सत्ता संभाली और देखते ही देखते भगवा पार्टी ने त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में भी अपनी सरकार बना ली। इस समय नागालैंड और मेघालय में भी भाजपा राज्य सरकार की सहयोगी है। लेकिन नागरिकता कानून लागू करने की हड़बड़ी ने भाजपा के लिए आज यहां ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए हैं कि पार्टी विधायक अपने इलाकों में जाने से डर रहे हैं। हाल ही में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सोनोवाल, केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और कई अन्य भाजपा नेताओं के घर पथराव और तोड़फोड़ की थी। ऐसे हालात को देखते हुए भाजपा विधायक मुख्यमंत्री को इस मामले का हल निकालने के लिए दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करने का आग्रह कर रहे हैं। साल 2006 से लगातार 3 बार भाजपा से डिब्रूगढ़ के विधायक बनते आ रहे प्रशांत फुकन ने BBC से कहा,
हम लोग का ये जो 4 पॉइंट है, देखिए पहला पॉइंट है आवर लैंग्वेज। हमारा लैंग्वेज को आप बढ़ाई देना चाहिए। हमारा लैंग्वेज असम और असमीज लैंग्वेज। और दूसरा है जो हम लोग का धारा जो है, एक दूसरा लैंड पॉलिसी जो है, और 6 जनगोष्ठी जनजातिकरण जो है, ये चार चीज आगे बढ़ा लीजिए। उसका बाद अगर इसको हमको दिल्ली में जाके सलाह मशवरा करके इसको थोड़ा आगे ले जाए तब ठीक होगा। सर्वानंद सोनोवाल के लिए हम लोग का पूरा विश्वास है, कोई दूसरा हमारा कोई अल्टरनेटिव वी कैन नॉट थिंक।
नागरिकता कानून को लेकर लोगों की नाराजगी झेल रहे सोटिया से भाजपा विधायक पद्म हजारिका मीडिया में लगातार बोल रहे हैं कि उन्होंने असमिया जाति को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई काम नहीं किया है।
6 नंबर दफा तो कार्यकारी कारण भाषा को सुरक्षित करने,
धारा 6 को लागू करने, भाषा को सुरक्षित करने, बेरोजगारों के लिए काम की व्यवस्था करने तथा संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को बाहर निकालने के लिए मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं। मुख्यमंत्री को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। ये थे भाजपा विधायक पद्म हजारिका के शब्द। पार्टी विधायकों के आग्रह के बाद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे आंदोलनकारी आश्वस्त हुए हो। आखिर नागरिकता कानून को लेकर मुख्यमंत्री की बात लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार बैंकुंठ नाथ गोस्वामी कहते हैं,
वो पुराना जो स्टैंड था ना, कोई कंक्रीट बात नहीं बोलता है, खाली ये बताया ये शांति से रहना चाहिए। ये मैसेज अभी जो सब आंदोलन जो सब कर रहे हैं ना, वो लोग के लिए कोई ये डिटरेंट फैक्टर नहीं हो सकता। रीजनल स्लोगन दे के ही वो लोग बोला था पहले, असम में तो कोई रिलीवेंस नहीं है नेशनल पार्टी को। उसके बाद वो लोग उधर गया जाके, वो लोग बहुत हैप्पी पहले से ही नहीं था।
असम में फिलहाल कर्फ्यू हटा दिया गया है और शुक्रवार से इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है, लेकिन राज्य में नागरिकता कानून के खिलाफ जारी विरोध अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। भले ही भाजपा नेता लोगों को शांति बनाए रखने के लिए आए दिन अपील कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में इतनी ताकतवर पार्टी के सारे एफर्ट इस विवादित कानून के सामने बेअसर साबित हो रहे हैं। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
और कार्यक्रम में अब अखबारों का जिक्र करते हैं। पिछले कई दिनों से नवीन अखबारों में जो है जलती हुई तस्वीरें, कभी टायर का धुआं और ये सब हमें दिखती हैं, फूकी हुई गाड़ियां दिखती हैं। आज के अखबार क्या कह रहे हैं?
जी, तस्वीरें आज भी नहीं बदली हैं, आज भी लगभग वही तस्वीरें हैं दिल्ली से छपने वाले अखबारों में, और हेडलाइंस भी लगभग वैसी ही हैं। मेरे सामने नवभारत टाइम्स रखा है और उसमें जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो यही है कि बिहार बंद में बवाल, रामपुर में मौत, कानपुर में चौकी फूकी। ये सब जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उसी से जुड़ी हुई खबरें हैं। और नवभारत टाइम्स लिखता है कि उत्तर प्रदेश में 17 मौतें हो गई हैं, हमारी रिपोर्ट में 15 मौतों का जिक्र था। तो अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग दावे भी,
कुछ औपचारिक आंकड़े होते हैं और कुछ अनौपचारिक आंकड़े होते हैं, आधिकारिक आंकड़े नहीं।
और आपने तस्वीरों का जिक्र किया था, तो इसी अखबार में पहले पन्ने पर ही दो तस्वीरें हैं और वो दोनों विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है बिहार के पटना की, जहां पर एक वाहन पे आग लगा दी गई है, उसके आगे प्रदर्शनकारी खड़े हैं। और दूसरी तस्वीर है दिल्ली के जामिया की, जहां पे एक छोटी सी बच्ची है जिसने फौजी वर्दी पहनी है, हाथों में तिरंगा थामा हुआ है और वो अपील कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए।
भारी जो विरोध प्रदर्शन है उसके बीच में एक खबर जिसको कि हमने अपने कार्यक्रम में भी लिया था कि नागरिकता कानून के विरोध के बीच में हजार से ज्यादा शिक्षाविदों ने समर्थन किया, इस तरह की खबरें अभी देखने को नहीं मिल रही थी। आज बहुत दिन बाद ये खबर देखने को मिली है कि इसके समर्थन में भी कुछ लोग जो आए हैं, उनकी एक चिट्ठी की बात है ये।
जी, समर्थन में लोग आए हैं और इसके साथ साथ बात ये भी हो रही है कि भ्रम लोगों के बीच फैला हुआ है कि ये NRC और CAA ये दोनों को मिला के लोग बातें कर रहे हैं आपस में। तो जो सरकार है, अब सरकार और खासतौर पर अगर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी, उसने अब फैसला किया है कि वे अब लगातार रैलियां करेगी देश के अलग अलग हिस्सों में। अगले 10 दिन में 1000 रैलियां करने का उन्होंने फैसला किया है और लोगों के बीच जो ये भ्रम पैदा हो रहा है इस कानून को लेकर, उसको खत्म करेंगे। तो दैनिक भास्कर ने उसी को अपने सबसे बड़ी खबर बनाया है और लिखा है कि भ्रम से निकली भाजपा, यानी भाजपा को शायद कोई भ्रम था जो वो कहना चाहते हैं कि भ्रम से निकली भाजपा और अब लोगों का भ्रम मिटाने के लिए 10 दिन में 1000 रैलियां करेगी।
इसके अलावा और कौन सी खबरें हैं?
इसके अलावा एक बड़ी खबर जो है, जो पिछले इस आंदोलन से
हैदराबाद मुठभेड़ की बात कर
जी बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि जो एक बहुत बड़ी खबर काफी दिनों तक चली थी हैदराबाद मुठभेड़ की खबर, उससे जुड़ी हुई जो ये खबर है कि 4 अभियुक्त जिनका कि कथित पुलिस एनकाउंटर में जिनकी मौत हो गई थी, उनका दोबारा से पोस्टमार्टम करवाने के लिए आदेश दिए हैं हाई कोर्ट ने। और ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में से पढ़ रहा हूँ।
जनसत्ता में भी यही खबर है और इसमें यह है कि 23 दिसंबर से पहले पोस्टमार्टम पूरी करके रिपोर्ट कर हाई कोर्ट के समक्ष, महापंजीयक के समक्ष दाखिल की जाए।
जी जी, और इन सभी जो अभियुक्त थे जिनकी मौत हो गई थी उस एनकाउंटर में, उनके शवों को जो है संरक्षित करने का भी आदेश हाईकोर्ट ने ही दिया था।
भारत के अखबारों की हमने समीक्षा कर ली, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के उर्दू अखबार हैं वो हफ्ते भर में कौन सी बड़ी खबरें वहाँ पर छाई रही, ये भी विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताइए।
तो पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते कुआलालंपुर समिट, जनरल परवेज मुशर्रफ की सज़ा और भारत प्रशासित कश्मीर, और भारत में CAA, NCR, NRC के जो खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी जुड़ी खबरें सुर्खियों में बनी रहीं। सबसे पहले अगर बात करें नागरिकता संशोधन कानून की खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की, तो भारत में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 15 लोगों की गोली लगने की खबर आई है और मंगलुरु में भी 2 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए तो पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर की खूब चर्चा हो रही है। एक्सप्रेस अखबार ने लिखा है कि विवादित नागरिकता कानून के खिलाफ भारत में भारी विरोध प्रदर्शन, पुलिस फायरिंग में 6 की मौत। अखबार लिखता है कि जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। अखबार के अनुसार अरुंधति रॉय ने कहा कि मोदी सरकार पूरे भारत को कश्मीर बनाने की कोशिश कर रही है। अखबार जंग ने लिखा है कि नागरिकता कानून के खिलाफ लाखों भारतीय सड़कों पर उतर गए हैं। अखबार लिखता है कि भारत में प्रदर्शनकारियों का समंदर उमड़ पड़ा है। अखबार नवाए वक्त ने सुर्खी लगाई है, इसके साथ ही जो है भारत प्रशासित कश्मीर से जुड़ी हुई खबर है कि वहां पे जब विशेष दर्जे को खत्म किया गया था तो उसके 5 महीने बाद श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अब अदा की गई है और ये खबर पाकिस्तान के लगभग सभी अखबारों में प्रमुखता से छाई हुई है। नवाए वक्त ने लिखा है कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में 5 महीने बाद नमाज जुमा, लेकिन दूसरी मस्जिदों में अभी भी ताले लगे हुए हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया नवीन नेगी पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबार के बारे में बताने के लिए। और यहीं पर कार्यक्रम में अब वक्त है खेल की खबरों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज कटक में 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। वेस्ट इंडीज ने चेन्नई में खेले गए पहले मैच में भारत को 8 विकेट से करारी मात दी थी। उस मैच में शाई होप ने नाबाद 102 और शिमरान हेटमायर ने 139 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन उसके बाद विशाखापत्तनम में खेले गए दूसरे मैच में भारत ने भी पलटवार किया और वेस्ट इंडीज को 107 रन से हार का स्वाद चखाया। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने 159 और केएल राहुल ने 102 रन बनाकर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। श्रेयस अय्यर ने भी केवल 32 गेंदों पर उपयोगी 53 रन बनाए। श्रेयस अय्यर मानते हैं कि जब दांव पर सीरीज लगी हो तो टीम हाथ बांध कर नहीं बैठेगी और जीत के लिए जी जान लगा देगी।
वैसे ही माइंडसेट से खेलेंगे जो हम लोगों ने लास्ट मैच में खेला। When the stakes are high, I feel all the players they lift up their socks and they put up their hands and obviously आपने देखा होगा कि जो भी हमारे मेन प्लेयर्स ये टीम के कोई ना कोई परफॉर्म करते हैं और यू नो टीम को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में लेके आए जिधर हम मैच जीत सकते हैं। तो इस मैच में भी वैसे ही होगा, कोई ना कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम ग्राउंड पे जाए और ऐसा एक मैजिकल मोमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि मैच में एक अफेक्ट पड़े।
वैसे भारतीय टीम में आज के मुकाबले के लिए एक परिवर्तन किया गया है और चोटिल दीपक चहर की जगह नवदीप सैनी को टीम में जगह दी गई है। उधर कराची में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच गया। कल जब तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब पाकिस्तान का स्कोर दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 395 रन था। सलामी बल्लेबाज शान मसूद 135 रन बनाकर आउट हुए तो उनके जोड़ीदार आबिद अली ने 174 रन बनाए। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 278 रन की साझेदारी की। कल स्टंप के समय कप्तान अजहर अली 57 और बाबर आजम 22 रन बनाकर नाबाद थे। श्रीलंका के लाहिरू कुमारा ने 88 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 271 रन पर समाप्त हुई और उसे पहली पारी के आधार पर 80 रनों की बढ़त भी मिली, लेकिन दूसरी पारी में पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने श्रीलंकाई गेंदबाजों की एक न चली। फिलहाल पाकिस्तान के पास 315 रनों की बढ़त है और उसके 8 विकेट बाकी है। वहीं दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को इस साल ATP स्टीफन नेटबर्ग खेल भावना पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये लगातार दूसरी बार और तीसरी बार है कि जब नडाल को इस पुरस्कार के लिए चुना गया, जबकि ब्रिटेन के एंडी मरे को वापसी करने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए चुना गया।
खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
BBC समाचार। भारत में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इन प्रदर्शनों में सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश हो रहा है, जहां प्रदर्शनों में अभी तक मरने वालों का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। अमेरिका ने रूस और चीन के उस कदम की आलोचना की है जिसके जरिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव को रोक दिया है। इस फैसले की वजह से लाखों सीरियाई लोगों तक पहुंचने वाली संयुक्त राष्ट्र की मदद में मुश्किलें आ सकती है। समुद्र में प्रवासियों को बचाने का काम करने वाले संगठन SOS मेडिटेरियन का कहना है कि वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने 2 अलग अलग अभियानों में जिन 100 से अधिक लोगों को बचाया है उन्हें कहाँ छोड़ा जाए। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने जिहादियों की तरफ से होने वाली हिंसा को पश्चिमी अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बताया है। मोहम्मद बुहारी अबुजा में आयोजित एक सम्मेलन में बोल रहे थे। पाकिस्तान के दक्षिणी शहर मुल्तान में बहाउद्दीन जकारिया विश्वविद्यालय के एक लेक्चरर जुनैद हफीज को ईश निंदा के आरोप में अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के आज के इस अंक में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मोहनलाल शर्मा को समस्त सहयोगियों के साथ विदा देंगे। नमस्कार।